साकार का जो दर्शन आप देख सकते हैं तो ये सगुण साकार रूप हुआ, दर्शन तो साकार का ही होता है। और दूसरा इसके दूसरी पक्ष के मां वह निर्गुण निराकार, तो सगुण साकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं या निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, तो इसके ऊपर भगवान इस प्रश्न के उत्तर में यही अपने निर्णय देते हैं कि भी सगुण साकार की उपासना करने वाले तो श्रेष्ठ हैं। तो इसमें श्रेष्ठता क्या है? क्या निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ नहीं? तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि वे भी मुझको ही प्राप्त थे, दो श्लोकों करके भगवान ऐसा कहते हैं। ये तु अक्षर निर्देश व्यक्तं परयुपासते, सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं गृहम्। संयम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबोधय, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरतः। संस्कृत के अर्थ माने अन्वय, तू ये इंद्रिय ग्राम संयम्य अत्यंतम सर्वत्र गम अनिर्देशम उत्यापुने अक्षरम परियोपासते, ते सर्वभूत ही ते रतः सर्वत्र संबुद्ध है माम एव प्राप्नुवन्ति। इसका अर्थ जो है हिंदी भाषा के वहां शब्दार्थ बतलाया जाता है। तू का मतलब है कि एक श्रेणी के विषय में कह दिया, अब दूसरी श्रेणी के विषय में कहा जाता है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से वश न कर करके और मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी आकर्षणीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित अचल निराकार अविनाशी सचिदान घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए जो पाते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अब इसका भाव समझना चाहिए। इसमें भाव ये बतलाया है, निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से बहुत प्राप्त है। निराकार स्वरूप का वर्णन किया, इसके मां भाव यह है और उसे परमात्मा की प्राप्ति बतलाई। तो बोले उसमें भी परमात्मा की प्राप्ति और इसमें भी परमात्मा की प्राप्ति। जब उसको ये कहा कि वे युक्ततम हैं और ये भी मेरे को ही प्राप्त होती, तो अर्जुन ने जो पूछा था इसका निर्णय क्या हुआ? बोले निर्णय तो उसी श्लोक में दे दिया कि जो सगुण की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, तो फिर ये कहते हुए मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं तो फिर उसके बीच में ये कमी क्या रही? तो आगे भगवान बतला रहे हैं कि इस साधन में निर्गुण निराकार के साधन में साधन काल के मां देहाभिमान रहने के कारण उसको परिश्रम अधिक होता है, क्लेश अधिक। तो जब परिश्रम अधिक होता है तो ये कहना चाहिए कि उसकी प्राप्ति कठिन है, ये तो नहीं कहना चाहिए कि भी उस साधन से ये उत्तम है। इस बात को ख्याल में लाकर के स्वामी शंकराचार्य जी ने इसका दूसरी प्रकार से अर्थ किया। उन्होंने ये अर्थ किया है कि उत्तम तो वे हैं सगुण साकार की उपासना करने वाले, उत्तम है वे। और इसको मैं उत्तम क्या कहूं, ये तो मेरे को प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वे निराकार की उपासना के विषय में कहते हैं, निर्गुण निराकार की उपासना को विशेषता देते हैं स्वामी शंकराचार्य जी। किंतु भक्ति मार्ग वाले जो हैं इस प्रकार से उसका अर्थ नहीं करते। उनका यह कहना है कि केवल एक प्रकार से निर्गुण निराकार की उपासना कठिन है इतनी बात नहीं, सगुण की उपासना वालों को श्रेष्ठ बतलाना युक्ति संगत है। कैसे युक्ति संगत है कि निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं उनको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। परमात्मा का जो साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त निर्गुण सगुण जिस प्रकार का परमात्मा का जो स्वरूप है ज्यों का त्यों उनको अनुभव हो जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं, और मुक्ति भी हो जाती है, उसे ब्रह्म को प्राप्त भी हो जाता है, ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाता है ब्रह्म की उपासना करने से, और ब्रह्म के स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। ये दो बात तो उसको हो जाती है। किंतु सगुण की उपासना के बीच के मां जो तीन बात बतलाई है वो एक बात तो समझो कि निर्गुण निराकार वाले को नहीं मिलती कि तीन कुर्सी। देखो ये गीता की एकादश अध्याय के अंत के बीच के मां चौन के श्लोक के बीच के मां जिस पर अर्जुन के प्रश्न पैदा हुआ है उसमें ये बात बतलाई है कि ज्ञातुं दर्शुं तत्वेन प्रवेष्टुं च परं तप है। ये परं तप है, मैं दर्शन उसको दे सकता हूँ और तत्व से जानने में आ सकता हूँ, और उस मेरे में प्रवेश करना चाहे एक ही भाव से मिलना चाहे तो उस प्रकार की प्राप्ति भी हो सकती है। तीन बात एक श्लोक में एक साथ के मां दी है। दृष्टुम होता है नेत्रों का विषय, यार ज्ञातुम होता है बुद्धि का विषय, और प्राप्त प्रवेशतुम होता है आत्मा का विषय कि नेत्रों से देखा जा सकता हूँ और मन से जाने बुद्धि से जाने जा सकता हूँ, और वो आत्मा से मुझ में एक ही भाव से प्रवेश कर सकता है। तो इसके बीच के मां प्रवेश तुम जो ठीक है और ज्ञात तुम ठीक है, जैसे पराभक्ति के द्वारा जो ज्ञान के द्वारा बताया भक्त्या मां में भी जान आती यवान यशास्त्र तत्व है तत्व मांग तत्व तो ज्ञातवा विस्तृत तदनंतरम। गीता के 18वें अध्याय के 55वें के श्लोक में भक्त्या मान पराभक्ति से यानी अपने वास्तु के मां जो ज्ञान योग से जिस प्रकार का जैसा जितना मैं हूं उसको एक प्रकार से जान जाता है, और जान करके उसके अनुसार बुद्ध परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। तो जानना और प्रवेश करना ये तो भक्ति के मार्ग में भी और ज्ञान के मार्ग में समान है। किंतु दृष्टुं जो शब्द है नेत्रों से देखा जा सकता हूं, ये ज्ञान के मार्ग में भगवान का जो सगुण साकार रूप है वो नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, माने भगवान उसको बाध्य नहीं है कि दर्शन देने के लिए, सगुण साकार रूप से प्रकट होकर उसको दर्शन देने के लिए बाध्य नहीं है, वे दर्शन भगवान के भक्ति से ही होती, इसलिए ये उसके मां विशेषता होने से यहां श्रेष्ठता बतलाई। अब निराकार विषय जो भाव है सो बतलाया जाता है कि दूसरी श्रेणी वाले जो निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं उनके विषय में बतलाया जाता है कि कैसा वह पुरुष है। इंद्रिय ग्राम संगनियम में इंद्रिया को जो समूह है और मन भी इंद्रिय के शामिल है, इन्हें सबको अच्छे प्रकार में बस में कर करके यानी नेम में माने बस में करना संघ उपस्थित होने से समस्त प्रकार से अच्छे प्रकार से समझो कि जिन्होंने मन और इंद्रियों को बस में कर लिया है इनको बस में कर करके के और उसे भगवान का जो ध्यान करते हैं निर्गुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान करते हैं, कैसा जो परमात्मा का स्वरूप है कि जहां समझो कि मन करके जिसका चिंतन नहीं हो सकता, बुद्धि क्षति भी एक प्रकार से वास्तव में जो भगवान का विशुद्ध स्वरूप जो उसका चिंतन नहीं हो सकता, और बुद्धि विशिष्ट जो बुद्धि से मिला हुआ जो भगवान का जो स्वरूप है, शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा, स्थिर हुई बुद्धि के द्वारा, उस तीक्ष्ण बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि वाले पुरुषों के द्वारा वो जाना जा सकता है, किंतु उसकी कोई आकृति नहीं है। इस वास्ते उसको अचिंत कहा है कि परमात्मा का जो निर्गुण निराकार का जो स्वरूप है वो अचिंत है, और उसको कोई प्रकार के निर्देश से नहीं बतलाया जा सकता, जैसे अंगुली निर्देश से हम बतलाते हैं ये चीज, इस प्रकार से थी उसको किसी भी प्रकार से हम बतला नहीं सकते, इसलिए एक प्रकार से उसको अनिर्देशम कहा, और वो है सब जगह के बीच के, कोई भी ऐसा स्थान नहीं कि जहां वो न हो। इस वास्ते उसको ये बात कही है कि सर्व सर्वत्र गम माने सब के मां व्यापक है, जहां आकाश सब जगह के बीच के मां व्यापक है, उससे भी बढ़कर के परमात्मा व्यापक है, परमात्मा आकाश में भी व्यापक है। वो कैसा है कि वो कूटस्थ है, कूटस्थ उसको कहते हैं कि एक प्रकार से समझो जैसे आकाश जो है एक आपने अस्थिर है, ये देश और काल करके माने शीघ्र विचलित नहीं होता, महाप्रलय के बीच में तो इसका भी विनाश हो जाता है, किंतु एक प्रकार से महाप्रलय पर्यंत कायम रहता है, इसलिए इसको कूटस कहते हैं, कूट की माफक अचल स्थित जिसमें चलन क्रिया और हरण क्रिया न हुए उसको कूटस कहते हैं। और ध्रुव और कहा कि कैसा है कि ध्रुव, ध्रुव का कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तव में है, भाव रूप से है, उसका अभाव नहीं, ध्रुव सत्य है, इस प्रकार से एक उसको बतलाया नहीं जाता और उसका चिंतन भी नहीं होता, किंतु वास्तव में वस्तु से वो है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं कि जो एक प्रकार से उसका चिंतन नहीं होता, आप देखिए क्या मन का कोई चिंतन कर सकता है, बुद्धि का कोई चिंतन कर सकता है, किंतु ये तो नहीं कर सकते कि बुद्धि कोई पदार्थ नहीं है, मन कोई पदार्थ नहीं है, किंतु उसको कोई लक्ष्य में बना करके उसका कोई चिंतन करे तो कठिन है। तो इसी प्रकार से समझो एक भगवान है किंतु उसका चिंतन नहीं किया जा सकता, इयंता करके बतलाया नहीं जा सकता। आप देखिए कि परमात्मा की जो प्रकृति है, शक्ति है, उसको भी कोई नहीं बतला सकता कि यह परमात्मा की शक्ति है, कोई पदार्थ के साथ में बतलाया जा सकता है। बहुत से समझो कि प्रकृति के जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको भी हम नहीं बतला सकते कि इसका ना ये सत्वगुण है, ये रजोगुण है, ये तमोगुण है, किसी वस्तु के साथ के मैं उसको बतला सकते हैं कि राजसी कर्म, सात्विक कर्म, तामसी कर्म, ये राजसी बुद्धि, सात्विक बुद्धि, तामसी बुद्धि, किंतु केवल जो सत्व जो है, सत्वगुण जो है, केवल जो रजोगुण और तमोगुण है, उसके स्वरूप को तो हम नहीं बतला सकते कि ये तो सत्वगुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण। तो इतने जो जड़ पदार्थ है उनको भी हम एक प्रकार से नहीं बतला सकते हैं, तो भगवान को हम किसी प्रकार से समझा नहीं सकते, इससे उनका कोई अभाव नहीं हो जाता, वस्तु से थी वो चीज तो है, बहुत सूक्ष्म है और अव्यक्त है, मन निराकार है, उसके कोई आकृति नहीं है। तो बिना आकार वाले बहुत से पदार्थ हैं कि जिसको हम समझा नहीं सकते हैं, किंतु भाव रूप से वो चीज है, तो भगवान भाव रूप से है, इसलिए उसको कहा गया कि वो अपने ध्रुव और उसमें हरण क्रिया नहीं और चलन क्रिया नहीं, दोनों क्रिया नहीं है, इस वास्ते ये दो शब्द दिए, कूटस्थम और अचलम। अचलम माने एक स्थान से दूसरे स्थान में चले नहीं, क्योंकि देश का अभाव है, परमात्मा देश काल से रहित है, कहीं देश हो गया तो यहां से उठकर वहां चला जा, तो इस वास्ते उसमें चलन क्रिया नहीं है और हलन क्रिया भी नहीं, अपने स्थान में बैठा भी, जैसे वृक्ष जो है अपने स्थान में बैठा हलता है हवा से, तो एक प्रकार से ऐसी बात भी नहीं कि अपने में गुंजाश नहीं, इतना ठोस है कि जिसमें हलचल क्रिया हो ही नहीं सकती, और काल करके भी जिसका अभाव नहीं होता, न देश करके न काल करके, क्योंकि निर्गुण आकार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो देश और काल से रहित है,
इस वास्ते ये दो शब्द कहे कि कूटस्थम और अचलम और अव्यक्तम, माने उसकी कोई गति नहीं, एक देशी नहीं। इस प्रकार का जो भगवान का जो स्वरूप और कैसा है कि अक्षरम, इसका कभी क्षय नहीं हुए, घटे नहीं। जो चीज क्षय होती है वो आगे जाकर विनाश को प्राप्त हो जाती है, तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। वो चीज का कभी क्षय नहीं होता है तो वो चीज नित्य, उसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा परमात्मा का स्वरूप है कि वो वस्तु से है, इस वास्ते उसको सत कहते हैं। और वो समझो कि सबका दृष्टा साक्षी होने के कारण से दूसरों के द्वारा चिंतन करने में नहीं आता, इस वास्ते उसको अचिंत कहते हैं। तो वह कैसा है कि सच्चिदानंद घन है, उनका स्वरूप आनंद है। किंतु ये सात्विक जो आनंद हम लोगों को ज्ञान वैराग्य भक्ति से होता, ऐसा नहीं। ये तो जड़ है, इसके तो हम लोग ज्ञाता है, भोगता है। और वो तो एक प्रकार से थी समझो कि ऐसा स्वरूप है, वो खुद आप ही अपने आप को जानता है। ब्रह्म जो है वो आप ही खुद अपने आप को जानता है, दूसरा उसको कोई नहीं जान सकता। और जो ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म बनकर ही ब्रह्म को जानता है, इस वास्ते ब्रह्म को ब्रह्म ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। ये बात सिद्ध हो जाती है। और वो एक प्रकार से आनंद जो है, बस आनंद ही आनंद है, गहरा है और अनंत है और सम है और चेतन स्वरूप है। ऐसा उस विज्ञानानंद परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार के स्वरूप को जो उपासते हैं, माने उस परमात्मा में तद्रूप होकर के एक ही भाव होकर के और उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करते हुए, यानी उसका अनुभव करना ही उसका ध्यान है। तो ध्यान करते हुए और जो इस प्रकार से उसकी उपासना करते हैं, उपासना माने उसका हर वक्त अनुभव करना ही उसकी उपासना है। तो उसका ध्यान करते हुए जो उपासना करते हैं, यानी उसकी वो जानकारी जागृत रहती है, ताजी रहती है, हर वक्त कायम रहती है। इस प्रकार का जो उस परमात्मा के विषय का जो ध्यान है, समझ है, उस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर करके के फिर उससे वो अनुभव कायम रहे, तो हर वक्त उस का कायम रहना ही उसकी उपासना है। प्रथम तो मनन करता है और मनन करके बाद निधि ध्यान करता है, उसका ध्यान करता है और तद्रूप होकर उसका ध्यान करता है। ब्रह्म रूप होकर के ही ब्रह्म का ध्यान होता है। और वे कैसे पुरुष हैं कि सारे भूतों के हित में रहते, ये उसकी पहचान। जैसे मनुष्य अपने आप के हित में रथ है, जो मनुष्य का ये 3.5 हाथ का शरीर है तो इष्ट के माई रथ है, अपने स्वार्थ के माई रथ है। और वो है महात्मा, वो तो ब्रह्म के मस्तित्व हो गया, और ब्रह्म के अंदर सारी संसार है, तो सारे प्राणी उसकी आत्मा है। तो सारे भूतों के बीच के माँ वो एक स्तंभ भाव से देखता है, सब जगह उनका समान भाव है। किस प्रकार से सारे भूतों में समभाव से वो देखता है कि सर्वभूतस्म आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि परीक्षते योग युगतात्मा सर्वतर समदर्शन। गीता अध्याय 6:29 में जैसे बतला है कि सब जगह के मां समान भाव से देखने वाला समदर्शी पुरुष कैसा वो, कि योग युगता आत्मा, योग जो ब्रह्म है उसमें जिसकी आत्मा युक्त है, एक ही भाव से जिसकी आत्मा हो गई है, जिसकी स्थिति परमात्मा में एक ही भाव से हो गई है, जो ब्रह्म के स्वरूप में अभेद रूप से स्थित हो गया है, ऐसा योग युक्त आत्मा और सब जगह के वहां सम भाव से देखने वाला समदर्शी पुरुष सारे भूतों को अपनी आत्मा के अंदर देखता है और आत्मा के अंदर सारे भूतों को देखता है। जैसे महान आकाश और उसके किसी एक हिस्से में बादलों का समूह है और सारे बादलों के समूह के बीच के मां आकाश जो है जड़ है, क्योंकि उसको थोड़ी बार के लिए चेतन मान लो। यदि आकाश चेतन हुए तो सारे बादलों के समूह में अपने आप को देखेगा कि बादल का एक अणु भी कोई खाली नहीं, जो आकाश से रहित हो।
और सारे बादलों के समूह को आकाश अपने एक अंश में एक हिस्से में देखेगा। तो जो ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो जाती है, ब्रह्म में जो एक ही भाव हो जाता है, ब्रह्म ही एक प्रकार से बन जाता है, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति हो जाती है, ऐसा पुरुष सारे ब्रह्मांड को, सारे प्राणियों को अपने निराकार ब्रह्म के स्वरूप के एक अंश में, अपने ब्रह्म के एक अंश में संकल्प के आधार देखता है। और सारे समझो कि ब्रह्मांड के बीच के मां वो अपने आप को देखता है, जैसे समझो कि बादल के अणु अणु के मां आकाश ये समझता है कि मैं अणु अणु में हूं। इस प्रकार से थी वो सारे भूत प्राणियों के अणु अणु के बीच में अपनी आत्मा को देखता है। जैसे एक ज्ञानी आदमी अपने शरीर के मां चरणों से लेकर मस्तक तक अपनी आत्मा का अनुभव करता है कि इसके मां मेरी आत्मा अणु अणु के बीच के मां है, इस प्रकार से अपनी आत्मा को देखता है। जैसे भगवान ने गीता की 6 अध्याय के 32 के श्लोक में बताया है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा दिवा दुखं सहयोगी परमो मत। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, हे अर्जुन जो पुरुष अपने आत्मा के उपमा के समान अपने सब में समभाव से देखता है और सुख और दुख में भी समभाव से देखता है, भगवान कहते हैं वे मेरे मत में परम योगी है। तो जैसे एक साधारण मनुष्य अपने चरणों में, हाथों में, पैरों में, शरीर में, सब सारे शरीर के मां आत्मा को संभाव से देखता है, पीड़ा होती है तो सारे शरीर में संभाव से, कहीं सुई चभो कर देख लो पीड़ा सब जगह होती है, और अपना अपना भी सब जगह एक सा है कि ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, ये मेरे नेत्र, ये मेरे कान, सबके मां मेरापन समान है और सबके बीच के मां आत्म भाव भी समान है और प्रेम भी सबके मां समान है और सुख दुख भी सब जगह समान भाव से होता है, क्योंकि देह के भीतर के बीच के मां उसका ये भाव है कि देह सो आत्मा है। इसी प्रकार से जिसका ये भाव जाता है कि ब्रह्म है सो मेरी आत्मा है और ब्रह्म के अंतर्गत सारा ब्रह्मांड एक अंश में है, इस वास्ते वो उसकी अंतर्गत ही आ जाता है, तो सारे भूत प्राणियों के बीच में अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष ऐसा अनुभव करता है जैसे एक अज्ञानी आदमी अपने शरीर में सब जगह के मौसम भाव देखता है और सबके हित में रहता है। जैसे एक अज्ञानी आदमी अपने स्वार्थ में रहता है, अपने शरीर के मां रहता है बस, और चाहे दुनिया में परले हो जाए किंतु मैं बाकी रह जाऊं, मैं नहीं मरूं, आपकी रक्षा करूं। तो जैसे उसकी प्रीति अपने शरीर मात्र में है, उसकी सारे ब्रह्मांड में, इस वास्ते वो महान आत्मा है, इस वास्ते उसको महात्मा कहती है। अरे सद्दे मात्र के मां जिनकी प्रीति है वो तो जीवात्मा है, महात्मा तो है नहीं। महात्मा तो होते हैं, उनका तो प्रेम सारे ब्रह्मांड में समान रहता है, सब जगह उनकी समबुद्धि होती है और सब में उसकी आत्मबुद्धि होती है और सब में उसके समान भाव से थी समझो कि अपनता होती है। तो इसके लिए कहते भगवान कि ऐसे जो पुरुष जो हैं वे माम एव है, एव शब्द देकर के जोर देते हैं कि वे मेरे को ही अपने प्राप्त होते हैं, वे मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। तो आप मुझको ही प्राप्त होते हैं, आप सगुण को प्राप्त होते हैं कि निर्गुण को, कि वो निर्गुण जो ब्रह्म है वो मैं ही तो हूं, ब्रह्मो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मेरे सिवा और कोई ब्रह्म अलग कोई पदार्थ तो नहीं है, मेरे से कोई जुड़ा। ये निर्गुण निराकार की उपासना की बात इन दो श्लोकों में बतलाए। तो स्वामी शंकराचार्य जी के मत के मां तो निर्गुण निराकार की जो उपासना करने वाले श्रेष्ठ, और भक्तों की दृष्टि के बीच के मां जो है सगुण की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है। निर्गुण निराकार की उपासना देह के मां अभिमान रहने से कठिन है, इस बात को सबको ही मानते हैं, किंतु जब देह के मां अभिमान नहीं रहता है तो वो कठिन नहीं है, सुगम भी है। और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उत्तम और मध्यम क्या, कि स्वामी शंकराचार्य जी का कहना वो तो समझो कि बहुत उच्च कोटि का, जिसको परमात्मा की प्राप्ति होगी उसको तो श्रेष्ठ ही बतलाया गया। और भगवान के
जो भक्त हैं भक्ति मार्ग से चलने वाले हैं वे कहते हैं कि नहीं, भगवान खास कहते हैं कि एक प्रकार से इन दो प्रकार की श्रेणी वालों में वे उत्तम है जो सगुण की उपासना करते हैं, वे उत्तम है। और स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि समझो कि उत्तम वे किससे हैं, जो साधारण जो मनुष्य उससे उत्तम है। उसका उत्तर ये दिया जाता है कि यहाँ प्रश्न क्या है, यहाँ साधारण मनुष्यों को लेकर के अर्जुन का प्रश्न नहीं है, दो प्रकार के भक्तों की श्रेणी को लेकर के है। एक श्रेणी तो सगुण की उपासना करती है और दूसरी श्रेणी निर्गुण की उपासना करती है, उनके मुकाबले में अर्जुन का पूछना है। और भगवान का ये उत्तर है कि एक प्रकार से मुझ सगुण की उपासना करने वाले उत्तम। तो इस वास्ते एक प्रकार से सबदा की तरफ ख्याल कर रहे थी, यह भगवान ने एक सगुण की उपासना वालों को ही उत्तम बदला है। इसके लिए दूसरा प्रमाण भी है, गीता की छठी अध्याय के अंत में 47 के श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो भंग सहमे युक्त तमो मत। योगी नाम अपि सर्वेषां, संसार में जितने प्रकार के जो योगी हैं उन सभी योगियों के मां मदगत अंतरात्मा वाले जिनकी आत्मा मेरे में ही है, ऐसा जो पुरुष है और श्रद्धा करके जो मुझको भजते हैं, मेरा ध्यान करते हुए मेरे में मन को लगा करके श्रद्धा पूर्वक जो मुझको जो भजते हैं, ऐसा जो मेरा भक्त है उसके लिए भगवान कहते हैं वह युक्त तम है। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जितनी प्रकार के ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी जितने हैं, तो उनके मां भी भक्ति भाव से और श्रद्धा पूर्वक जो उपासना करने वाला जो भगवान का उच्च कोटि का जो भक्त है उसकी प्रशंसा की गई है सब में। इससे एक प्रकार से भगवान का तात्पर्य अर्जुन के लिए यही प्रतीत होता है कि जो मुझ सगुण भगवान की जो उपासना करने वाले हैं वे सो श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं ये बात आपको बतलाई दी कि उसको सगुण साकार का दर्शन हो सकता है, बिना अनंत भक्ति के बिना सगुण साकार का दर्शन नहीं हो सकता, और सब बातों में समान है। ये बात उसमें विशेष होने के कारण से अरे उसको भगवान ने सबसे बढ़कर के श्रेष्ठ बताया। तो भगवान कहते हैं कि निराकार की उपासना साकार की उपासना की अपेक्षा कठिन भी, ये आगे के श्लोक में कहते हैं, कले सो अधिक तरसते सा मैं व्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्ता ही गतिर दुखं देह वदिर वाप्यते। भगवान कहते हैं संस्कृत के अनुभव बतलाए जाते हैं, देशाम अव्यक्ता सकत चेतसाम कलेश अधिक तरह ही यस्मात् देवद ही अव्यक्ता गति ही दुखम अवाप्यते। भाषा में अर्थ बताया जाता है कि हृदय किंतु उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन के बीच के मां कलेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानी देहाभिमानी पुरुषों से अव्यक्त विषय की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक शरीर के मां अभिमान रहता है तब तक शुभ सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म के मां स्थिति होनी कठिन है, और देहाभिमान जब नहीं रहता है तब उसकी स्थिति होनी सहज है।
नारायण नारायण अध्याय 12 श्लोक 1 से 5 तक के विषय में यह व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंद गागे द्वारा आज मिति माघ सुदी 30 नवंबर 2011 प्रातःकाल 10 बजे श्री राम दीदा जी परशुराम बुलाई कोटि वृंदावन धम्म में दिया गया।